मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 2 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मनोज, आप चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं, दिव्येंद्र श्रीलाल आप छपरा बिहार से हैं, कायनात नफीस आप पाडरौना उत्तर प्रदेश से हैं, वेद प्रकाश त्रिपाठी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, नवीन सिंह चंदेल कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, शैलेश कुमार गौतम आप भी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से हैं और मित्रों कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से ही हैं सौरभ यादव, यानी कि 4 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं जो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चारों नौजवान साथी हो सकता है कि एक दूसरे को जानते हों और उन्होंने एक साथ ये फैसला किया हो कि एकेडमी चलना चाहिए। तो मित्रों अगर यह सच है तो आप सर्वोत्तम स्थिति में हैं, 4 लोगों का आपका बेहतर ग्रुप है और यहां से आप जो लर्न करके जाएंगे डेफिनेटली 4 मित्र मिलकर उसका अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं भी है तो आप सबने एक ही साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, नाम मैंने बता दिए हैं, तो कोशिश कीजिए ढूंढने की ताकि आप लोगों की आपस में मुलाकात हो सके। और मित्रों अंतिम आज के दोस्त हैं पीयूष कुमार सिंह जो नारायण टोला गांव के हैं, उनका जिला है छपरा बिहार। तो मनोज, दिव्येंद्र, कायनात, वेद प्रकाश, नवीन, शैलेश, पीयूष और सौरभ, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग श्रम कानून पर कुछ बात करेंगे, श्रम सुधार पर बात करेंगे और श्रम सुधार के बेसिक्स की चर्चा में कुछ आप लोगों से करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ हम न्यूज एनालिसिस के तहत दूसरी न्यूज को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप सच में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या दूसरी चीजों के माध्यम से आपको रोज चीजें पता लग रही हैं। एक ये तरीका है कि आप इनके साथ लगातार जुड़े रहें और इनमें से जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको परीक्षा की दृष्टि से लगती हैं उन्हें आप नोट करते चलें, ये एक तरीका है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके को अपनाते हैं, ज्यादातर क्या, मुझे लगता है कि सफल होने वाले लगभग सभी स्टूडेंट इस तरीके को अपनाते होंगे क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट तरीका है और साथ ही साथ बहुत ही व्यावहारिक है और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है। जो दूसरा तरीका है जो सामान्यतः स्टूडेंट जब मिलते हैं तो अपने इस तरीके की वो चर्चा करते हैं और वो तरीका यह है कि अखबार तो वो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं लेकिन न्यूज से गंभीरता से नहीं जुड़े रहते क्योंकि उनको लगता है कि अखबार में तो न्यूज पता लग ही गई है और फिर महीने में एक मैगजीन जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की आती है हम उसमें पढ़ लेंगे तो उसमें सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं घटनाएं हैं उनको उस जगह पे मिल जाती हैं, तो वो एक दूसरा तरीका है। मित्रों मैं यहां आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले तरीके को अपनाएं, उससे जो ज्ञान है जो इन्फॉर्मेशन है धीरे धीरे आपके दिमाग में रचता बसता जाएगा, वो आपकी ज्यादा मदद करेगा। खासकर इसकी चर्चा मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं कि आज के न्यूज में 2-3 ऐसी न्यूज हैं जो अपने आप में तो कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है लेकिन कंटेंट के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टॉपिक जब अगर हम इसको टॉपिक में कन्वर्ट कर दें तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और जब उस टॉपिक पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इन न्यूज को आप कंटेंट के रूप में उसमें डाल सकते हैं, बल्कि डालना ही चाहिए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि नहीं आप अपने समय का पूरा ख्याल रखते हैं, उन पर आपकी नजर है, उनके बारे में आप विचार करते हैं, आपके ध्यान में वो सारी बातें हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आज की ऐसी आपको 3 घटनाएं बताता हूं, मतलब कल की घटनाएं हैं मैं आज आपको बता रहा हूं अखबारों में और जो आपको न्यूज में भी सुनने को मिली होगी। पहला देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से क्या कहा है कि जो बच्चों के साथ जो यौन दुष्कर्म के मामले होते हैं इनके लिए आप सब स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाइए, मतलब इनको रूटीन में मत लीजिए। इसका मतलब है कि ये बहुत ही गंभीर मसले हैं और इन मसलों का फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो ये एक यूं कह लीजिए कि एक तथ्य है। अब जब भी दुष्कर्म को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या किए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए गए हैं, जब इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है तो डेफिनेटली उसमें आप इसको एक तत्व के रूप में इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये आप तब कर सकेंगे जब आपके पास ये नोट होगा। तो आज के अखबार से आपको ये चीज पता लग सकती है। फिर आपने एक और भी देखा, आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि जो सड़क सुरक्षा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार का दिखाई दे रहा है मेंस का। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, एक फैसला सुनाया है और फैसला ये है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करता हुआ मिलेगा, पकड़ा जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है सड़क सुरक्षा के तहत। अब ये कानून बना है, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने बनाया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं आप जानते हैं कि वो कानून की तरह होते हैं, मतलब उन्होंने एक फैसला दिया, कानून नहीं बनाया, कानून तो सरकार बनाएगी लेकिन वो कानून जैसी मान्यता उसको मिल जाती है। तो अब आप देखिए कि सड़क सुरक्षा के लिए आपको एक बहुत ही ताजा तरीन और बहुत ही प्रभावशाली आपको एक कंटेंट मिल गया। और जब तक हम लोगों के अंदर कानून का भय पैदा नहीं करेंगे, मान करके चलिए मित्रों, तब तक इनफैक्ट सही मायने में हम इन स्थितियों पर नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। हमारे यहां तो आप देखते हैं कि बिना हेलमेट के लोग जा रहे हैं, बिना स्पीड का कोई ख्याल ही नहीं है, दो लोग केवल बैठ के चलने चाहिए बाइक पर और पता लगा चार चार पांच पांच लोग बैठे हुए हैं। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, टर्निंग, साइड लाइट, इन सब का तो कोई नियम कानून किसी को कोई मालूम ही नहीं है, जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। और पता नहीं अभी तो कुछ ऐसा लग भी रहा है कि जैसे जानबूझ करके दुर्घटनाओं की संख्या कुछ बढ़ा दी गई है या क्या हो गया। रोज अखबार में आप देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों की तरफ के अखबारों में भी इस तरह की दुखद घटनाएं सुबह सुबह पढ़ने को आप सबको मिलती होंगी। खैर, तो ये राजस्थान हाईकोर्ट का मित्रों एक कंटेंट आपको मिल गया। इसके बाद आपने देखा कि पिछले कुछ समय से जो सोशल मीडिया है, फेसबुक और जो दूसरे इस तरह के जो व्हाट्सएप हैं, इसमें जो डेटा हमारा होता है उस डेटा के गलत उनको बेच करके और इस्तेमाल की आर्थिक लाभ लिए जाने की बात खूब जोर शोर से उठी है, आपको मालूम है, और इससे व्यक्ति की निजता का उल्लंघन हो रहा है। आज के दैनिक जागरण, आपके दैनिक भास्कर ने एक एडिटोरियल लिखा है और वो एडिटोरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी तरह का एक संकट अब ट्विटर के सामने आया है कि ट्विटर ने भी अपने कुछ डेटा बेचे हैं, दूसरों को उसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। अब ये जो संकट उठ के खड़ा हुआ है, टॉपिक यही है कि जो सोशल मीडिया पर जो हमारे डेटा हैं वो कितने सुरक्षित हैं, इससे हमको किस तरीके का खतरा है, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और आप देखिए कि इसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है क्योंकि ये डेटा सामान्य ही काम के नहीं होते हैं। आप देखिए कि जो अमेरिका और रशिया का जो चुनाव हुआ था, सॉरी अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें रशिया ने जो ट्रंप को फेवर किया है उसके पीछे कहा जाता है कि इन डेटा का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह की अगर चीजें होने लगेंगी फिर तो चुनाव और एक तरह से लोकतंत्र सबका सब अर्थहीन हो जाएगा। लोग तो यहां तक कहते हैं कि ब्रेग्जिट जो हुआ उसमें भी इस तरह का मैनिपुलेशन किया गया, भारतीय चुनाव में भी आप इस तरह की बातें सुन रहे हैं कि फलाने ने फलानी कंपनी का सहारा लिया। तो इस पर यूरोप के देश तो बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और बहुत जल्दी वो इसके खिलाफ बहुत गंभीर कानून लेकर के आने वाले हैं। भारत में देखिए कि क्या स्थिति होती है। तो यह एक कंटेंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो मित्रों इसीलिए मैंने कहा कि अब आप अपने ढंग से पैटर्न निर्धारित कीजिए कि आप किस पैटर्न पर तैयारी करना चाह रहे हैं। चैनल की जहां तक बात है मित्रों, कल का अगर आपने NDTV का चैनल 9 बजे का देखा हो प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में एक बहस बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी ही थी, वो सूचना के अधिकार को लेकर। और मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी तो होगी ही कि जो सूचना का अधिकार है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो चीजें दिखाई जा रही थी उसका केंद्र यह था कि पहली बात तो यह कि सूचना के अधिकार के लिए जो आयोग बनाए गए हैं, आपको मालूम है कि राज्य स्तर पर भी आयोग होते हैं और केंद्र स्तर पर भी आयोग होते हैं। राज्य स्तर के आयोग की जो अपील है फिर वो आप केंद्र स्तर के आयोग पर कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टाइप का कुछ मामला है, तो इनके बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। कुछ जगह तो नियुक्ति ही नहीं है पहली बात, और जबकि सरकार लगातार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अगर इनमें नियुक्तियां हैं भी तो आप देख करके अंदर से हिल जाएंगे कि मोर देन 80% जो पोस्ट भरी गई हैं वो सब के सब पूर्व नौकरशाहों के द्वारा भरी गई हैं, यानी कि सब के सब फार्मर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। तो जो फार्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बट नेचुरल है कि अब इतना वक्त नहीं है कि इस पर मैं बात कर सकूं, वो ज्यादातर सरकार के फेवर में रहते हैं ज्यादातर, और सच पूछे तो जब वो पदों पर ही रहते हैं तो सरकार के साथ उनकी कुछ इस तरह से बातचीत हो जाती है कि भैया ठीक है हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें वहां बना दो। ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या ये कह लीजिए कि एक नैतिक दबाव सा वो ब्यूरोक्रेट्स महसूस करते हैं, मतलब कोई लिखित अनुबंध तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत गजब का काम करके दिखाया भी है, अपनी तटस्थता शो की है। सीएजी वगैरह में हम देखते हैं, इलेक्शन कमीशन में हम देखते हैं कि उन्होंने वो भी दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि वो पद ब्यूरोक्रेट्स को दिए ही क्यों जाने चाहिए। दे दीजिए आप, अगर मान लीजिए कि कहीं 11 पद हैं तो ठीक है 2-3 पद ब्यूरोक्रेट संभाल लें, बाकी में दूसरे क्षेत्र के लोगों को आने दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स भरे गए हैं। तो ये आशंका पैदा करता है लोगों के दिमाग में सरकार के उद्देश्यों के प्रति कि वो क्यों ऐसा कर रही है। तो बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था, आप लोग अभी भी उसे देख सकते हैं, शायद वो अवेलेबल हो जाता है। तो मित्रों ये कुछ बातें न्यूज एनालिसिस के तहत थी। अब मैं आता हूं श्रम कानूनों में सुधार को लेकर, हालांकि वक्त बहुत कम बचा है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी बातें तो कर ही सकते हैं। फ्रेंड जो श्रम कानूनों में सुधार की बात है, ये मान करके चलिए कि आपके सिविल सर्विस मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए जब भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है कि भारत में बिजनेस करना कितना आसान है कितना कठिन है, तो उसके तहत दो सबसे बड़े रोड़े दिखाई देते हैं, दो सबसे बड़े रोड़े। पहला रोड़ा है नौकरशाही, यानी कि अगर कोई यहां उद्योग लगाना चाहता है तो उसे परमिशन लेने लेने में ही पता नहीं कितना वक्त लग जाता है, नौकरशाही। दूसरा जो रोड़ा है वो श्रम कानून, अक्सर आप अखबारों में पढ़ते होंगे। इस श्रम कानून का क्या रोड़ा है, देखिए मित्रों श्रम कानून का रोड़ा यह है कि अगर आप पीछे से, अब चूंकि वक्त नहीं है कि हम पीछे से जाएंगे, तो देखिए एक तरफ उद्योगपति हैं और दूसरी तरफ श्रमिक हैं, राइट। औद्योगिकीकरण के बाद इन श्रमिकों का जबरदस्त रूप से शोषण हुआ, भयानक रूप से शोषण हुआ, 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं वहां की जो परिस्थितियां हैं बहुत बुरी, अंधेरे में काम कर रहे हैं, घाएं घाएं ढाएं ढाएं की आवाजें आ रही हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, मतलब बहुत बुरी हालत थी, वेतन बहुत कम दिया जा रहा है, बच्चों से महिलाओं से जम डट डट कर काम लिया जा रहा है। तो धीरे धीरे श्रमिक संगठन बने और यही सी श्रमिक संगठन ने 8 घंटे काम की मांग करते हुए आंदोलन किया था अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में और हे स्क्वायर में। फिर वो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें कुछ श्रमिक मारे गए थे, 4 श्रमिक पुलिस वाले, फिर 7-8 मारे गए, फिर मुकदमा चला, उसमें कुछ मजदूर पकड़े गए, उसमें से 7 लोगों को फांसी चढ़ा दी गई। तो उसी की स्मृति में फिर वो मई दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस मतलब मनाया जाता है। खैर तो धीरे धीरे श्रमिक संगठन बनते चले गए और ये अपने अधिकारों की मांग करने लगे। डेमोक्रेसी इस चीज को एनकरेज भी करती है, जो साम्यवादी पार्टियां हैं वो डेफिनेटली इसके पक्ष में होती हैं और मानवता की दृष्टि से होना भी चाहिए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि उद्योगपति एक तरफ हो गए, श्रमिक संगठन दूसरी तरफ हो गए, इनमें टकराव की स्थिति पैदा हो गई, मतलब समझौते की स्थिति की जगह टकराव की स्थिति पैदा हो गई। और ये टकराव की स्थिति इतनी बदलने लगी, वे बढ़ने लगी कि बात बात पर पता लगा कि हड़ताल हो रही है, फिर तालाबंदी हो रही है, तो उद्योगों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। तो सरकार ने अब 2 तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की। पहला तो यह है कि भी कुछ ऐसा रेगुलेशन बनाया जाए कि श्रमिकों के ये अधिकार हैं और उद्योगपतियों के लिए भी कानून बनाया जाए कि आपको श्रमिकों के लिए ये करना पड़ेगा। और चूंकि भारत ने कल्याणकारी व्यवस्था को अपनाया था तो स्वाभाविक है कि वो श्रमिकों की दृष्टि से भी सोचेगी। धीरे 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 क्या हुआ, जैसे आप वेस्ट बंगाल को लीजिए, तो वेस्ट बंगाल किसी समय हमारे देश का सबसे औद्योगिकृत राज्यों में से एक था। वहां लंबे समय तक 30 साल तक मार्क्सवादी पार्टी की सरकार रही, तो वो मार्क्सवादी पार्टी की सरकारें ज्यादातर श्रमिकों पर टिकी होती है, तो उन्होंने श्रमिकों को इतनी लिबर्टी दे दी कि पता लगा रोज हड़ताल हो रहा है, श्रमिकों को आप कुछ कह नहीं सकते, उनसे आप काम नहीं ले सकते। तो नतीजा ये हुआ कि वह राज्य जो किसी समय में इतना बड़ा औद्योगिकृत राज्य था, धीरे धीरे वहां के उद्योग सबके सब गायब हो गए, बंद हो गए। तो अंततः देखिए उससे नुकसान किसका होता है, राज्य का भी हुआ यानी कि राष्ट्र का भी हुआ, और श्रमिकों का भी हुआ क्योंकि रोजगार चले गए। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए, ये बहुत बड़ा संकट है, ये छोटा मोटा संकट नहीं है। और जब उदारीकरण के बाद 1992 के बाद ये हुआ कि भाई फॉरेन कंट्रीज वाले आकर के भारत में उद्योग लगाएं, तो वो तो उद्योग लगाने से पहले वो सारी चीजों को का जजमेंट करते हैं, जायजा लेते हैं। तो उनको लगा कि अगर ये श्रम कानून इसी तरह से रहे, जैसे कि अगर कोई बड़ा उद्योग है तो अगर आपको उस उद्योग को बंद करना है तो आप बिना सरकार की परमिशन के बंद नहीं कर सकते, उन श्रमिकों को आप हटा नहीं सकते, अगर आप श्रमिकों को हटाएंगे तो आपको उनको इतना मुआवजा देना पड़ेगा, फलाना फलाना करना पड़ेगा। तो अगर उद्योग घाटे में चल रहा है तो पता लगा कि आप उसे बंद नहीं कर सकते, आपको और अधिक घाटा उठाते रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको उनके लिए दुनिया भर की सहूलियतें देनी पड़ेंगी, लेकिन मानवता की दृष्टि से कुछ सहूलियतें आवश्यक भी होती हैं। तो ये बड़े टकराव की स्थिति से हो गई है। तो सरकार भी श्रम कानूनों को बहुत तेजी से लागू करने में हिचकिचाती इसलिए है कि अगर श्रमिकों के अगेंस्ट में वो चीजें चली गई तो मुसीबत, और अगर उद्योगपतियों के बहुत अगेंस्ट में चीजें चलती रही तो कह रहे हैं कि इज आप डूइंग बिजनेस में भारत बहुत पीछे है। तो मित्रों, श्रम कानूनों के में सुधार की इसीलिए मांग की जा रही है, और अच्छी बात है कि सरकार धीरे 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 इस दिशा में काम भी कर रही है। और चूंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं चाहूंगा कि सरकार ने इस दिशा में क्या क्या काम किए हैं, इन पर आप कुछ तैयारी कर लें। राइट फ्रेंड्स, तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आज मैं आपको ढेर सारी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। और मित्रों, जहां तक ईमेल लिखने की बात है, मैं सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन आज मुझे किसी का नाम लेने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि मेल लिखे नहीं गए हैं, मेल बहुत से आए हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा उसमें इस तरह का मेल नहीं मिल सका कि मैं लिखने वाले स्टूडेंट को अलग से धन्यवाद दे सकूं, उसके प्रति आभार व्यक्त कर सकूं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।